वाणी की एक पंक्ति है, मन बुद्धि और देह विकार अनंत कर्म इसमें संचार। अजीव सतरूप विसराए बांधा प्रकृति नित आवेश। कहते हैं मन बुद्धि और देह ये तीनों जीव के लिए विकार है, अर्थात मेरे लिए ये तीनों विकार है। क्यों विकार है? अनंत कर्म इसमें संचार, इनके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे मन में वासना की, चाहे बुद्धि में निर्णय की, या देह में देह की आवश्यकता की, या देह में परिवर्तन की, इसमें अनंत कर्मों का संचार या अनंत कर्मों की उत्पत्ति होती रहती है, जिसमें ये जीव फंसा रहता है। अब बताइए, एक कर्म हमारे सामने यदि कोई आवश्यक आ जाता है तो उस कर्म को करने के लिए मेरे अंदर कितनी बेचैनी रहती है, कितनी उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कितने उसके लिए साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं, और फिर कर्म का फल जब मन के अनुकूल हो जाता है तब उस पर संतोष होता है, प्रतिकूल होता है तो उसमें संतोष होता है। जब अनंत कर्मों का क्षेत्र है ये मन बुद्धि और देह, तो इसमें जीव कैसे चैन में जी सकता है? ये असंभव बात है। इस करके ये वाणी कह रही है कि उठरे गुनिया कर विचार दुख का रूप सकल संसार। पूरा का पूरा संसार इस जीव के लिए ये दुख का रूप है। क्यों दुख का रूप है? क्योंकि जिसके आधार पर ये जीवन जी रहा है मन बुद्धि और देह, ये जीव के लिए विकार रूप है, अर्थात जीव के लिए ये मुसीबत है। क्यों मुसीबत है? क्योंकि इनके द्वारा अनंत कर्मों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे इसको 100 वर्ष की आयु भी क्यों ना मिल जाए, निरंतर कर्म में बिजी रहता है और हमेशा ही परेशान रहता है। ये बात यदि एक उदाहरण से समझी जाए तो जरा समझना सरल हो जाता है। मान लिया मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मैंने मानसरोवर झील का दर्शन करना है, वहां जाना है। वो है तो चाइना में, लेकिन लोग जाते हैं वहां। मैं साधन इकट्ठे करके वहां पहुंच भी गया। अब जो भी टूरिज्म का डिपार्टमेंट होगा वो आपको ज्यादा समय तो देता नहीं है, आधे घंटे का समय दे देगा, 15 मिनट का समय दे देगा, कहना अब आपने इतनी देर वहां पर दर्शन करना है और फिर आगे चलना। अब विचार करो, मैं जब झील के किनारे खड़ा हुआ हूं तो प्रसन्नता कहां होगी? प्रसन्नता आपके मन में होगी। क्यों? क्योंकि मन वो ऑर्गन है आपके देह के अंदर, वो सूक्ष्म ऑर्गन है या सूक्ष्म अंग है जिसमें इच्छा उत्पन्न होती है भोग विलास करने की, सुख प्राप्ति। तो मैंने कल्पना बनाई थी कि इसको देखने से सुख मिलेगा, इसीलिए मन उसमें सुख का दर्शन करता है, उसके ठंडे पानी का, उस दृश्य का, आसमान का। अक्षत झील में पड़ रहा है तो झील का पानी नीला नजर आता है उसका, चारों तरफ पर्वत श्रृंखला का, तो मन उसको एंजॉय कर रहा है। लेकिन साथ में परेशानियां भी हैं, वहां की ठंड, वहां की कठिन यात्रा, वहां का खर्च, इतनी दूर आना, थकान वहां की, सब कुछ वो भी मन में ही है। तो एक मन को चीज खुश कर रही है, दूसरी मन को दुखी कर रही है। अब दूसरी बुद्धि है आपके पास, अब बुद्धि क्या करती है? मन में वासना है, सुख भोगने की इच्छा है, तो बुद्धि में क्या है? बुद्धि जिज्ञासा करती है, ये झील है, बुद्धि के अंदर विचार आएगा ये कितनी गहरी है, इतना सारा पानी यहां कैसे इकट्ठा हुआ होगा, यहां के चारों तरफ के पहाड़ ये कैसे बने होंगे, पता नहीं कितने प्रकार की जिज्ञासाएं बुद्धि के अंदर उठती है। और फिर उसकी प्लानिंग करती है, यहां महीना भर कैसे रहा जा सकता है, ये सारे काम बुद्धि के हैं। तो मन भोगों के लिए सोच रही है, उसके सुख के लिए सोच रही है, जो दुख मिल रहा है उसके लिए सोच रही है, और बुद्धि जिज्ञासा कर रही है आगे के लिए, उसको उसमें चेंज करने के लिए, कैसे इस स्थान को ऐसा बनाया जा सकता है कि यहाँ लोग महीना दो महीना स्थायी निवास भी कर सकें, सारे काम बुद्धि के। और तीसरी चीज भी है, आपके पास देह भी, अब देह आपको मजबूर कर रही है, क्योंकि देह ना ज्यादा देर वहां खड़ी रह सकती, ना ज्यादा वहां ठंड भोग सकती, क्योंकि देह रोगी हो जाएगी, कहे कुछ नहीं रही है, लेकिन जीव मन के कारण खुश हो रहा है, मन के कारण दुखी हो रहा है, और बुद्धि की जिज्ञासा के कारण आगे की प्लानिंग हो रही है उसकी। और देह की लिमिटेशन के कारण, देह की अपनी सीमा के कारण, वो वहां पर ज्यादा सुख भोगने के लिए मजबूर है, ज्यादा सुख नहीं भोग सकता वहां, कुछ देर ही वहां खड़ा रह सकता है। तो ये तीनों ही जीव के लिए मजबूरी का कारण, मन में इच्छा पैदा ही तो हुई होगी, किसी का सुना होगा, उसने आके वर्णन किया होगा आपसे, उस वर्णन को सुन के आपके मन में भी इच्छा पैदा हो गई कि मैंने भी मानसरोवर जाना है। लेकिन वो आधे घंटे का सुख या 15 मिनट का सुख जो इस जीव को आशा कर रहा है मिलेगा, कितना लंबा दुख झेला इसने, कितनी बेचैनी झेली, कितना लंबा सफर तय किया। तो मन की एक छोटी सी खुशी, लेकिन इस मन के कारण जीव को कितना बड़ा बंधन मिल गया, कितनी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ गई, उसकी गिनती कोई नहीं करता। जहां कोई तारीफ करता है किसी जगह की, बड़ा अच्छा है, वो ऐसे ही कहेगा हम बंधन में फंस जाते हैं। तो सत्पुरुष विवेक दृष्टि से इस चीज को देखते हैं, इसलिए वाणी उसका एनालिसिस कर रही है, उसका विश्लेषण कर रही है कि मन बुद्धि और देह ये जीव के लिए विकार है, मुसीबत है, दुख और बेचैनी का स्रोत है। लेकिन हमारी बुद्धि का निर्णय या हमारा निर्णय ये नहीं होगा, इसीलिए वाणी कह रही है कि अनंत कर्म तिसमें संचार, इन तीनों में मन बुद्धि और देह के द्वारा अनंत कर्मों का वहां पर उनका पैदा होना संभव होगा। तो अनंत कर्म अर्थात जीवन भर आप इन तीनों के आधार पर ही कर्म करते रहते हो, और लक्ष्य आपका होता है संतोष और सुख की प्राप्ति, लेकिन इतने कर्मों को जिसमें लगातार कर्म हो रहे हैं, लगातार कर्म की प्लानिंग हो रही है, बताइए जीव चैन में कैसे जी सकता है? चैन तो जीव को मिलना है, क्योंकि इन सबके अंदर जिंदा वस्तु कोई नहीं है। जिंदा वस्तु कहते हैं जिसमें चेतना होती है, जो जानता है, जो सुख का अनुभव करता है, जो दुख का अनुभव करता है। ना मन सुख दुख का अनुभव करता है, ना बुद्धि सुख दुख का अनुभव करती है, ना देह सुख दुख का अनुभव करती है, इनके द्वारा मैं सुख और दुख का अनुभव करता हूं, मैं चैन और बेचैनी का अनुभव करता हूं। तो इसीलिए जो चीज इस जीव को निरंतर बेचैन रखे, तो बताइए वो जीव के लिए दुख रूप हुई या सुख रूप हुई। इसीलिए ये वाणी का निर्णय बिल्कुल ठीक है कि दुख का रूप सकल संसार, लेकिन वो कह क्या रहे हैं आगे, मूढ़ा जीव सतरूप विसराए, मूढ़ा जीव अर्थात ये मूर्ख जीव सतरूप को भूल कर बांधा प्रकृति नित आवे जाए। प्रकृति कहते हैं इस देह को, ये जीव इस देह के बंधन में बार बार पैदा होता है और बार बार मरता है। तो देह पैदा होती है ना और देह मरती है। जीव इस देह के द्वारा अनगिनत जीवन भर कष्ट भोगता है और यदि पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाए तो बेचैनी यदि 90% भोगी है तो शायद आप कह सकते हो सुख सुने 10% होगा। कितना बड़ा घाटे का सौदा है ये मानव जीवन यदि बिना विवेक के व्यतीत किया जाए तो। इसलिए रास्ता तो है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने आपको मुसीबत में फंसा दिया है, उसने आगे का रास्ता आपका खोल रखा है। ठीक है, आप के अंदर सत्पुरुषों की बातों को ध्यान से पढ़ने का, ध्यान से सुनने का, ध्यान से उसको सीखने का, उसका विश्लेषण करने का, इसका आपको शौक ही नहीं है। संसार की बातों का बहुत विश्लेषण करते हो, बहुत तैयारियां करते हो, उसमें जीवन की सफलता देखते हो और विफल हो जाते हो। तो जीवन ही आपसे छिन गया तो विफलता नहीं और क्या है। देखिए अंदर एक चीज ऐसी भी है जहां मौत नहीं है, जहां रोग नहीं है, जहां निराशा नहीं है, जिसको जानकर आपकी बुद्धि के अंदर जिज्ञासा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, देह का बंधन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, मन के अंदर सुखों की लालसा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो वो कहते हैं चेतन छोड़ जड़ रूप समावे, उत्पत पर लय में दुख पावे। कहते हैं चेतन को ये जीव छोड़ देता है। चेतना इसके अंदर है, जो जानता है उसमें चेतना। मैं अपने मन के बारे में जानता हूं नहीं जानता हूं, मुझे कोई कंफ्यूजन है क्या? बुद्धि में क्या जिज्ञासा उठ रही है मैं उसको जानता हूं नहीं जानता हूं? देह में क्या तकलीफ है मैं जानता हूं नहीं जानता हूं? मैं अपने मन, अपने ही बुद्धि, अपनी देह के बारे में सब कुछ जानता हूं, इसलिए मैं चेतन हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। उसको सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, उसमें शांति का अनुभव करता हूं जब सुख मिलता है, विफलता मिलती है तो मैं बेचैनी का अनुभव करता हूं। तो अनुभव करने वाला, जानने वाला मैं हूं, मुझे पता है इस बात, लेकिन ना बुद्धि जानती है, ना मन जानता है, ना देह जानती है, इसीलिए इनको जड़ कहा। इसलिए संपूर्ण प्रकृति ये जड़ रूप है जिससे ये देह बनी है, जिससे ये संसार बना है। वाणी कह रही है कि चेतन छोड़ जड़ रूप समावे, उत्पत प्रलय में दुख पावे। इसीलिए संसार की उत्पत्ति प्रलय में, सुखों की उत्पत्ति और प्रलय में, संसार की परिस्थितियों में जो उत्पत्ति और प्रलय होती है, हर चीज यहां पर परिवर्तनशील है, उत्पत्ति होती है और नाश हो जाती है। ये इसका पैदा होना और नाश होना है, ये पूरे ब्रह्मांड में सारी प्रकृति का यही चक्र है। कोई चीज यहां स्थिर नहीं रहती, पूरे एक साल मौसम कितने चेंज होते हैं, सारे जीव इस मौसम के कारण कितने परेशान रहते हैं, कोई स्थिरता है ही नहीं। ना देह के अंदर कुछ स्थिरता है, ना देह के बाहर कोई स्थिरता है। तो इस निरंतर परिवर्तनशील देह और संसार में, निरंतर परिवर्तनशील मन बुद्धि और देह में ये जीव दुखी रहता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है कि उत्पत प्रलय में दुख पावे। ये देह उत्पन्न होती है, पैदा होती है और मर जाती है, जवान होती है और बूढ़ी हो जाती है, स्वस्थ देह रोगी हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि आपने वाणी के आधार पर या सत्पुरुषों के वचनों के आधार पर इस चीज को नहीं सीखा और केवल देखा देखी, जैसे लोगों को देखा है आपने कि किसी ने कही, किसी ने कहा भाई इसने जो है इंजीनियरिंग की है, मैंने अपने बेटे के लिए लक्ष्य बांध लिया, मैं भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, इससे बड़ा सुख मिलता है। तो आप जो कोई प्लानिंग करते हो संसार में वो आपकी सुख की प्लानिंग होती है और देखा देखी होती है, बुद्धि का उसके आगे कोई निर्णय नहीं होता। तो बुद्धि का निर्णय कहाँ होता है सही? जो ईश्वर की वाणी है वहां बुद्धि के लिए सही निर्णय दिया होता है। और संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां बुद्धि के लिए ठीक निर्णय हो। ये माया चक्र है, जीव यहां फंस जाता है और बड़ी दुर्गति होती है और अंत में देह का खात्मा। इसीलिए एक देह में चीज है जिसका नाम कोई लेता ही नहीं है, वही वास्तव में असली चीज। जब बुद्धि के अंदर उसकी जिज्ञासा होती है, मन के अंदर उसके प्राप्ति की इच्छा होती है और देह को आप उस साधन के लिए तैयार करते हो, तब आपकी सही यात्रा प्रारंभ होती है। उसके लिए वाणी कह रही है, साचा जीवन अविनाशी नाद, साचा जीवन अविनाशी नाद अंतर वसया सो विस्माद। तो जीव का सच्चा जीवन कहां है, असली जीवन कहां है जहां उसको आनंद की, संतोष की, चैन की प्राप्ति होनी है। वो कहते हैं साचा जीवन अविनाशी नाद अंतर वसया सो विस्माद। वो आश्चर्यजनक चीज जिसको अविनाशी नाद बोल रहे हैं या अविनाशी ईश्वर बोल रहे हैं, वो इस देह के अंदर बसता है। जिस प्रकार मेरा मन इस देह में बसता है, बुद्धि इस देह के अंदर वास करती है, उसी प्रकार वो अविनाशी नाद, वो ईश्वर भी इस देह के अंदर वास करता है। मैं खुद भी इस देह के अंदर ही वास करता हूं, लेकिन क्योंकि मैंने गुरु नहीं बनाया, संसार को अपना गुरु बना लिया, इसलिए सारी जिंदगी भटकता रहता हूं, परेशान होता रहता हूं और लोगों की नकल करके मैं जीवन जीता रहता हूं। और फिर जब निर्णय करने की बात आती है तो कहते हैं सारा संसार ऐसे ही तो जीता है, मैं जब ऐसा ही जी रहा हूं तो क्या गलती कर रहा हूं। ये बात कह के आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते। अब बताइए संसार में कौन आपको चेतावनी देगा तुम गलत राह पकड़े हुए? ये चेतावनी तो केवल गुरु दे सकता है, गुरुवाणी दे सकती है, शास्त्र दे सकते हैं, और वो ईश्वर दे सकता है जो अवतार रूप में धरती पर आता है। कृष्ण आए अर्जुन के लिए, महाराज जी आए हमारे लिए, और हर युग में सत्पुरुष आते ही रहते हैं, ऐसा कभी कोई युग खाली नहीं जाता जो प्रभु अवतार रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमको ठीक राह दिखाने के लिए धरती पर प्रकट ना होते हो और हमारा मार्गदर्शन ना करते। तो मार्गदर्शन यही तो करेंगे वो, मन के बारे में भी सुन रखा है मैंने, बुद्धि के बारे में भी सुन रखा है, देह के बारे में तो देखता ही हूं, लेकिन ईश्वर के बारे में मेरा कोई निश्चय नहीं, वो देखा देखी बात है। इसलिए हमारी पूजाएं भी देखा देखी होती है, जैसा पूजाएं करते देखते हैं बस हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम अपना लेते हैं, फिर उसी पूजाओं के लिए झगड़े करते रहते हैं, उसी पूजाओं के लिए समाज में विध्वंस होता रहता है, मारकाट होती रहती है। लेकिन गुरु जो रास्ता बताता है पूजा का, गुरु जो ईश्वर का रास्ता बताता है, उसमें मारकाट नहीं है, उसमें शांति ही शांति है, क्योंकि ये अंदर का मार्ग है, बाहर क्या मतलब किसी से। गुरु शिष्य के बीच में समाज नहीं आता, शिष्य के लिए गुरु है और गुरु के लिए शिष्य है। तो ये वाणी गुरु शिष्य के बीच की बात है, ईश्वर और जीव के बीच की बात है। तो वो ईश्वर इस जीव का मार्गदर्शन कर रहा है कि इस देह के अंदर एक ऐसी चीज है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, और वो बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि कह रहे हैं कि मन तन अपना कीजे धूल, मन तन को धूल के समान आप इसमें मिटा दीजिए, अर्थात मन और तन का जो उपयोग है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए कीजिए, जो इस देह के अंदर मौजूद है और जो केवल आनंद रूप है, केवल शांति रूप है, वहां द्वंद नहीं है कि जन्म है तो मौत है, सुख है तो दुख है, वहां ये चीज नहीं है। वो अमर जीवन है, अमर सुख है, जहां जीव को कभी क्लेश पैदा होने की उम्मीद है ही नहीं। कहते हैं कि मन तन अपना कीजे धूल, साचे नाम में रहे मखमूल। उस सच्चे नाम में जो अंदर नाम साधना के बाद प्रकट होता है, उसमें ये मस्त रहता है, ये जीव उसमें मस्त हो जाता है, इसको कोई भय नहीं है। मानसरोवर के दर्शन करने गए तो 15 मिनट ही टाइम मिलेगा, आधे घंटे ही टाइम मिलेगा, शरीर भी संग नहीं देगा क्योंकि ठंड बहुत है, साधन भी साथ नहीं देंगे क्योंकि उसका भी टाइम निश्चित, वापस लौटना है। तो देह की भी दुर्दशा, समय की भी बर्बादी और मानसिक क्लेश, जीव बेचारा कहीं का नहीं रहता, नकल कर करके कुछ लक्ष्य बना लेता है सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन भोगने के बाद पता लगता है कि सुख के मुकाबले में दुख तो बहुत ज्यादा मिला मुझको। एक मानसरोवर की यात्रा बताइए कितनी लंबी यात्रा होती है, शायद पता नहीं महीने भर का टाइम लग जाता होगा लोगों को, 15 दिन का टाइम लगता होगा, वो डिपेंड करता है साधन क्या मिलते हैं। लेकिन सुख के क्षण है वो कितने, आधे घंटे, उसमें भी अंदर कोई ना कोई प्यास बन जाती है, कोई ना कोई निराशा बन जाती है, कोई ना कोई आशा बन जाती है, लेकिन अंदर जो प्रभु का आनंद है वो निज आनंद है मेरा, वो स्रोत हमेशा अंदर मौजूद है। इसलिए जिसने गुरु की बात मानकर बाहर संयम धारण कर लिया, 5 नियम के आधार पर जीवन बनाने की उसने अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने ये करना ही करना है, तो वो कुछ वर्षों के बाद उस आनंद का पात्र बन जाता है जिसको हम ईश्वर का अनुभव कहते हैं, नाथ का अनुभव कहते हैं, कुंडली का अनुभव कहते हैं। वो जीवन सत्ता मेरे अनुभव में आ जाती है, तब पता लगता है आज तक तो मैं इंद्रियों के बंधन में था, अर्थात मन के बंधन में था, बुद्धि के बंधन में था, देह के बंधन में था, लेकिन जो चीज मुझे अब अनुभव में आ रही है ये तो तीनों से मुक्त है। इसलिए वो संसार के नहीं सुनता, वो गुरु की सुनता है, शास्त्र की सुनता है, और अंतर्यामी ईश्वर के साथ दिन रात जब आगे बढ़ता है, दिन रात उसके साथ लगा रहता है। जैसे महाराज जी का जीवन देखिए, महाराज जी खुद कह रहे हैं प्रेमी 3 वर्ष की आयु से इनकी यह हालत है कि रात दिन ये ईश्वर के आनंद के साथ ही लगा रहा, और 9 वर्ष की आयु में रात में जंगल में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। विचार करो, 9 वर्ष का बालक, जंगल में क्या मिलेगा उसको, लेकिन उस प्रभु के आनंद में वो जंगल में रात व्यतीत करने के लिए तैयार रहते थे, और सारा जीवन फिर उनका एकांत में बीता जैसा कि हम जीवन में पढ़ा। तो वो प्रभु आनंद रूप है, वो प्रभु मुक्ति रूप है, इसीलिए कहते हैं कि परम सुख मोक्ष पहचान निह कर्म स्वरूप भेटे भगवान। वो भगवान निष्कर्म स्वरूप है, अर्थात भगवान में कर्म नहीं है, मन बुद्धि देह में कर्म है, कर्म की प्लानिंग है, कर्म का एग्जीक्यूशन है, तो प्रभु है वो निष्कर्म है, निह कर्म है। इसीलिए जो जीव उस प्रभु की ओर अग्रसर होता है वो निष्काम हो जाता है, कर्म का बोझ उस पर से हट जाता है, और जो देह के द्वारा कर्म होते भी हैं प्रारब्धवश, उसके अंदर से कोई वासना नहीं होती, इसीलिए वो उनको प्रभु हुक्म में देखता है, प्रभु शक्ति से देखता है, उसको अपनी मन बुद्धि का बंधन उसमें नहीं होता, इसीलिए वो मोक्ष की स्थिति है जहां ये जीव अपने ही मन, अपनी ही बुद्धि और अपनी ही देह के बंधन से मुक्त हो जाता है, और उस ईश्वर के साथ एक हो जाता है जो आनंद का स्रोत है, आनंद का सागर है, और इसीलिए उसको मोक्ष, अर्थात सारे बंधनों से मुक्ति, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्ति और शांति के सागर में उसके साथ मुक्ति। ओम जन्म सर।